श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, इख्तिताम, उपशम। आम तौर पर लोग तशरीहों में नई बात की तलाश करते हैं, लेकिन दर हकीकत सच्चाई तो सच्चाई है, वो ना नई होती है और ना पुरानी पड़ती है। नई बातें तो अखबारों में शाये होती रहती हैं, जो मरते उभरते वाकयात हैं। सच्चाई तो नाकाबिले तब्दील है, ऐसी हालत में कोई दूसरा कहे भी क्या, अगर कहता है तो उसने हासिल नहीं किया। हर अजीम इंसान अगर चलकर उस मंजिल मकसूद तक पहुंच गया तो एक ही बात कहेगा, वो समाज के बीच दरार नहीं डाल सकता, अगर डालता है तो साबित है कि उसने हासिल नहीं किया। श्री कृष्ण भी इसी सच्चाई को अयां करते हैं, जिसे पहले के मुफक्करीन ने देखा था, हासिल किया था, और मुस्तकबिल में होने वाले अजीम इंसान भी अगर हासिल करते हैं तो यही कहेंगे, अजीम इंसान और उनका तरीक़ेकार। अजीम इंसान दुनिया में सच के नाम पर फैले और सच की तरह नजर आने वाले बुरे रिवाजों को खत्म करके भलाई की राह तैयार कर देते हैं। ये राह भी दुनिया में पहले से ही मौजूद रहती है, लेकिन उसी के मतवाजी, उसी की तरह महसूस होने वाली तमाम राहें राइज हो जाती हैं, उनमें से सच को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है कि दरहकीकत सच्चाई है क्या। अजीम इंसान हकीकी मकाम पर फाइज होने की वजह से उनमें से सच की पहचान करते हैं, उसे तय करते हैं, और उस सच्चाई की जानिब रूबरू होने के लिए समाज को तरगीब देते हैं। यही राम ने किया, महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, यही हजरत ईसा अलैहि सलाम ने किया, और यही कोशिश हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। कबीर, गुरु नानक वगैरह सब ने यही किया। अजीम इंसान जब दुनिया से पर्दा कर लेता है तो बाद वाले लोग उसके बताए हुए रास्ते पर ना चलकर उसके मकाम पैदाइश, फना होने की जगह और उन मकामात की इबादत करने लगते हैं जहां जहां उन्होंने कयाम किया था। बतदरीज वो उनका बुत बनाकर इबादत करने लगते हैं, अगरचे शुरू में वो उनकी यादें ही संजोते हैं, लेकिन बाद में चलकर गुमराह हो जाते हैं, और वही गुमराही कदामत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जोग के मालिक श्री कृष्ण ने भी उस वक्त मुआशरे में सच्चाई के नाम पर राइज रस्मों रिवाजों की तरदीद करके मुआशरे को सही राह पर लाकर खड़ा कर दिया। बाब 2 श्लोक 16 में उन्होंने फरमाया, अर्जुन, बातिल चीज का कोई वजूद नहीं है और हक की तीनों दौरों में कमी नहीं है। बंदा परवर होने की बिना पर यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनके फर्क को हक शनास इंसानों ने देखा और वही मैं बयान करने जा रहा हूं। 13वें बाब में उन्होंने मैदान और आलिमे मैदान का बयान इसी तरह किया जो आरिफ हजरात के जरिए आम तौर से गाया जा चुका था। 18वें बाब में ईसार और तर्क दुनिया का उनसुर बताते हुए उन्होंने चार ख्यालात में से एक को मुंतखब किया और उसे अपनी हिमायत अता की। तर्क दुनिया यानी सन्यास। श्री कृष्ण के जमाने में आग को ना छूने वाले और गौर व फिक्र को भी तर्क करके अपने को जोगी, तारिकु दुनिया यानी जाहिद कहने वालों का फिरका भी सरसब्ज हो रहा था। उसकी तरदीद करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि राह इल्म और राह बंदगी दोनों में से किसी भी रास्ते के मुताबिक अमल को तर्क करने का उसूल नहीं है। अमल तो करना ही होगा। अमल करते करते रियाजत इतनी लतीफ हो जाती है कि सारे इरादों की कमी हो जाती है। वो मुकम्मल तर्क दुनिया है। बीच रास्ते में तर्क दुनिया नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ आमाल को तर्क कर देने से और आग ना छूने से ना तो कोई जाहिद होता है और ना जोगी। जिसे बाप दो, तीन, पांच, छह और खास तौर पर बाब 18 में देखा जा सकता है। अमल यानी कर्म। इसी तरह की गलतफहमी अमल के मुतालिक भी मिलती है। इसके बारे में बाब 2 श्लोक 39 में श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, अब तक ये अक्ल की बात तेरे लिए इल्मी जोग यानी सांख्य योग के मुतालिक कही गई, अब उसी को तू बेगरज अमल के बारे में सुन। उसका हामिल बनकर तू आमाल की बंदिश का अच्छी तरह खात्मा कर सकेगा। उसका थोड़ा भी बर्ताव जिंदगी और मौत के बहुत बड़े खौफ से नजात दिलाने वाला होता है। इस बेगरज अमल में यकीनी तरीका एक ही है, अक्ल एक ही है, समत भी एक ही है, लेकिन जाहिलों की अक्ल बेशुमार शाखों वाली है। लिहाजा वो अमल के नाम पर मुख्तलिफ तरीकों का फैलाव कर लेते हैं। अर्जुन, तू मुअय्यना अमल कर, यानी तरीके बहुत से हैं लेकिन वो अमल नहीं है। अमल कोई मुकर्ररा समत है। अमल कोई ऐसी चीज है जो तमाम जन्मों से चले आ रहे अजसाम के सफर का खात्मा कर देता है। अगर एक भी जन्म लेना पड़ा तो सफर पूरा कहां हुआ। यज्ञ। ऊपर जिस मुअय्यना अमल की बात कही गई वो मुअय्यना अमल है कौन सा? श्री कृष्ण ने साफ किया कि यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ क्या तरीकेकार ही अमल है। इसके अलावा दुनिया में जो कुछ किया जाता है वो इसी दुनिया की बंदिश है, ना कि अमल। अमल तो इस दुनिया की कैद से नजात दिलाता है। अब वो यज्ञ क्या है जिसे अमल में लाएं तो अमल पूरा हो सके। बाब 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीकों से यज्ञ का बयान किया, जिसका लुब्बे लबाब माबूद में दाखिला दिला देने वाले तरीके खास की अक्कासी है, जो तनफ्फुस से, तसव्वुर से, गौर फिक्र और जब्त नफ्स वगैरह से कामयाब होने वाला है। श्री कृष्ण ने यह भी साफ कर दिया कि दुनियावी मालो मता से इस यज्ञ का कोई ताल्लुक नहीं है। दुनियावी मालूमता से कामयाब होने वाले यज्ञ बहुत कम हैं। आप करोड़ का हवन ही क्यों ना करें। सारे यज्ञ मन और हवास के बातिनी अमल से कामयाब होने वाले हैं। मुकम्मल होने पर यज्ञ जिसकी तखलीक करता है उस उनसुरे लाफानी की जानकारी का नाम इल्म है। उस लाफानी इल्म को हासिल करने वाले जोगी अबदी माबूद से ताल्लुक बना लेते हैं। जिसे हासिल करना था हासिल कर ही लिया तो फिर इस इंसान का अमल से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा सारे आमाल उस बदी ही दीदार के साथ इल्म में खत्म हो जाते हैं। अमल करने की बंदिश से वो आजाद हो जाता है। इस तरह मुकर्रर यज्ञ को अमली जामा पहना देना अमल है। अमल का खालिस माना है इबादत। इस मुअय्यना अमल यज्ञ के लिए अमल या उस माबूद के लिए अमल के सिवा गीता में दूसरा कोई अमल नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने जगह जगह पर जोर दिया। बाप छे में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म करने के काबिल अमल कहा। बाप 16 में बताया कि ख्वाहिश, गुस्सा और लालच का तर्क कर देने पर ही वो अमल शुरू होता है जो आला शरफ को अता कराने वाला है। दुनियावी कामों में तो जो जितना मशगूल है उसके पास ख्वाहिश, गुस्सा और लालच उतने ही ज्यादा सजे सजाए दिखाई पड़ते हैं, इफरात से पाए जाते हैं। इसी मुअय्यना अमल को उन्होंने शरीयत के उसूलों के मुताबिक अमल का नाम दिया है। गीता अपने में मुकम्मल शरीयत है, आला तरीन शरीयत वेद है, वेदों के जौहर उपनिषद हैं, और उन सब का लुब्बे लबाब जोग के मालिक श्री कृष्ण का यही कलाम गीता है। 17वें और 18वें बाब में भी शरीयत के तरीके से मुकर्ररा अमल, मुअय्यना अमल, फर्ज अमल और अमल सवाब से इशारा करके उन्होंने बार बार जोर दिया कि मुअय्यना अमल ही आला इफादी है, भलाई करने वाला है। जोग के मालिक श्री कृष्ण के इतना जोर देने पर भी आप इस मुअय्यना अमल को ना करके श्री कृष्ण का कहना ना मानकर उल्टा सीधा तकय्युल करते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में किया जाता है अमल है, कुछ भी तर्क करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समरे की ख्वाहिश मत करो, हो गया बेगरज अमली जोग। फर्ज के ख्याल से करो, हो गया फर्ज का जोग। कुछ भी करो, माबूद को सुपुर्द कर दो, हो गया खुद सुपुर्दगी का जोग। इसी तरह यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ यानी जिसमें तमाम जानदारों का खुद के खाने में से निवाला दिया जाता है, अजदाद का यज्ञ यानी पितृ यज्ञ जिसमें अजदाद को पानी, तिल वगैरह देते हैं, जिसमें मुताला और इबादत की जाती है, होम यज्ञ या देव यज्ञ यानी जिसमें विष्णु वगैरह देवताओं को हवन देते हैं, मेहमान नवाजी यानी 5 यज्ञ गढ़ लेते हैं, और उसके तरीके कार में स्वाहा स्वाहा लफ्ज बोलकर यज्ञ की चीजें आग को सुपुर्द कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं। अगर श्री कृष्ण ने साफ बयान ना किया हो तो हम कुछ भी करें, अगर बयान किया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, लेकिन हम मान नहीं पाते। विरासत में तमाम रस्मों रिवाज, इबादत के तौर तरीके हमारे दिमाग को जकड़े हुए हैं। खारिजी चीजों को कभी हम फरोख्त करके भाग भी सकते हैं, लेकिन दिल में पहले ही से मौजूद ये असरार दिमाग में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के अल्फाज को भी हम उन्हीं के मुताबिक ढालकर कबूल करते हैं। गीता तो बेहद सलीस आम फहम संस्कृत में है, आप तरतीब में ढालकर भी माने निकालें तो कभी शुबा नहीं होगा। यही कोशिश पेश करदा किताब में की गई है। जंग यानी युद्ध। अगर यज्ञ और अमल दो सवाल ही सही तौर पर समझ लें तो जंग, नस्ली तसनीफ दोगला, इल्मी जोग, अमली जोग या मुख्तसर में मुकम्मल गीता ही आपके समझ में आ जाए। अर्जुन जंग नहीं करना चाहता था, वो कमान फेंक कर रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गया, लेकिन जोग के मालिक श्री कृष्ण ने वाहिद अमल की नसीहत देकर अमल को सिर्फ अटल ही नहीं किया बल्कि अर्जुन को उसी अमल की राह पर चला भी दिया। जंग हुई, इसमें शक नहीं। गीता के 15-20 श्लोक ऐसे हैं जिसमें बार बार कहा गया, अर्जुन तू जंग कर, लेकिन एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मार काट की हिमायत करता है। यानी काबिले गौर है, बाब 2, 3, 11, 15 और 18। क्योंकि जिस अमल पर जोर दिया गया वो था मुअय्यना अमल, जो यकसुई में जाने के बाद तबीयत को हर जानिब से समेट कर तसव्वुर करने से होता है। जब अमल की यही शक्ल है, तबीयत यकसुई और तसव्वुर में लगी है, तो जंग कैसी? अगर गीता के मुताबिक इफादा जंग करने वाले के लिए ही है तो आप गीता का पल्ला छोड़ दें। आपके सामने अर्जुन की तरह जंग की कोई हालत तो है नहीं। दरअसल तब भी वो हालत मौजूद थी और आज भी जैसी की तैसी है। जब तबीयत को सब तरफ से समेट कर आप दिल की दुनिया में तसव्वुर करने लगे तो ख्वाहिश, गुस्सा, लगाव, हसद वगैरह उयूब आपकी तबीयत को टिकने नहीं देंगे। उन उयूब से टक्कर लेना, उनका खात्मा करना ही जंग है। दुनिया में जंग होती ही रहती है, लेकिन उससे भलाई नहीं बल्कि बर्बादी होती है। उसे सुकून कह लें या हालात की नजाकत, दूसरा कोई सुकून इस दुनिया में नहीं मिलता। सुकून तभी मिलता है जब यह रूह अपने बरहक मकाम को हासिल करे। यही वाहिद सुकून है जिसके बाद कोई बेइत्मीनानी नहीं होती है। लेकिन यह सुकून तदबीर से मिलता है, उसी के लिए मुअय्यना अमल का उसूल है। नस्ल यानी वर्ण, इस अमल को ही 4 नस्लों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में तकसीम किया गया। फिक्र में लगते तो सभी हैं, लेकिन कोई तनफ्फुस की रफ्तार पर बंदिश लगाने में कादिर होगा तो कोई शुरू में ही 2 घंटे तक फिक्र में बैठकर 10 मिनट भी अपने मुवाफिक नहीं पाता। ऐसी हालत वाला कम इल्म रियाजत कश शुद्र नस्ल यानी दर्जे का है। वो अपनी फितरी सलाहियत के मुताबिक खिदमत से ही अमल के शुरुआत करे। बतदरीज वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण नस्लों यानी दर्जात की सलाहियत में उसकी खसलत में ढलती जाएगी, वो तरक्की याफ्ता होता जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण नस्ल यानी दर्जा ऐबदार है, क्योंकि वो अभी माबूद से जुदा है। माबूद में दाखिला पा जाने पर वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। नस्ल के माने शक्ल, ये जिस्म आपकी शक्ल नहीं है, आपकी शक्ल वैसी है जैसी आपकी खसलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इंसान अकीदतमंद है, लिहाजा कहीं ना कहीं उसकी अकीदत जरूर होगी। जैसी अकीदत वाला वो इंसान है, खुद भी वही है। जैसी खसलत वैसा इंसान। नस्ल अमल की सलाहियत का बातिनी पैमाना है, लेकिन लोगों ने मुअय्यना अमल को तर्क कर बाहर समाज में पैदाइश की बुनियाद पर जातों को नस्ल मानकर उनके रोजगार का वसीला तय कर दिया, जो महज एक मुआशरती इंतजाम था। वो अमल की हकीकी शक्ल को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी खोखली मुआशरती इज्जत और रोजी रोटी को आंच ना आए। आगे चलकर नस्ल का तायुन सिर्फ पैदाइश से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 नस्लों की तख्लीक मैंने की, क्या भारत से बाहर तख्लीक नहीं है? दूसरी जगह तो इन जातों का कोई वजूद ही नहीं है। भारत में इस इंतजाम के तहत लाखों जातें और जेली जातें हैं। श्री कृष्ण ने क्या इंसानों को बांटा था? नहीं, खुसूसियात की बुनियाद पर आमाल बांटे गए, अमल बांटा गया। अमल समझ में आ गया तो नस्ल का माना समझ में आ जाएगा, और नस्ल समझ में आ जाने पर इब्नुल गैब यानी दोगले की हकीकी शक्ल आप समझ लेंगे। दोगला यानी वर्ण संकर। इस राह अमल से डग जाना ही दोगला है। रूह की खालिस नस्ल है रूह मुतलक। उससे ताल्लुक बनाने वाले आमाल से भटक कर कुदरत में मुरक्कब हो जाना ही दोगला है। श्री कृष्ण ने साफ आया किया कि उन आमाल को किए बगैर उस मकाम को कोई हासिल करता नहीं, और हासिल करने वाले अजीम इंसान को अमल करने से ना कोई फायदा है ना छोड़ने से कोई नुकसान। फिर भी अवामी फराहम के लिए वो अमल का बर्ताव करते हैं। उन अजीम इंसानों की तरह मुझे भी हासिल होने के काबिल कोई चीज ला हासिल नहीं है, फिर भी मैं ताबईन के भलाई के ख्याल से अमल का बर्ताव करता हूं। अगर ना करूं तो सभी दोगले हो जाएं। औरतों के नाखिस होने से दोगला होना तो सुना गया, लेकिन यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि आला मकाम पर फाइज अजीम इंसान अमल ना करे तब लोग दोगले हो जाते हैं। उस अजीम इंसान की नकल करके इबादत करना बंद कर देने से दुनिया में भटकते रहेंगे, दोगले हो जाएंगे, क्योंकि उस अमल को करके ही उस आला बेगरज अमल की हालत को अपनी खालिस नस्ल रूह मुतलक को हासिल किया जा सकता है। इल्मी जोग और अमली जोग यानी ज्ञान योग तथा कर्म योग। अमल एक ही है, मुअय्यना अमल इबादत, लेकिन उसको करने के नजरियात दो हैं। अपनी कुव्वत को समझकर नफा और नुकसान का फैसला लेकर उस अमल को करना इल्मी जोग है। उस राह का रियाजत कश जानता है कि आज मेरी यह हालत है, आगे इस राह में मेरा किरदार बदलकर यह हो जाएगा, फिर अपने मकाम को हासिल करूंगा। इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए अमल में लगता है, अपनी हालत को जानकर चलता है, लिहाजा इल्मी जोगी कहा जाता है। खुद सुपुर्दगी के साथ इसी अमल में लगना, नफा व नुकसान का फैसला माबूद के हवाले करके चलना बेगरज अमली जोग राह बंदगी है। दोनों के मुहर्रिक पीर मुर्शिद हैं। एक ही अजीम इंसान से नसीहत लेकर एक खुद कफील होकर इस अमल में लगता है, और दूसरा उन्हें मुर्शिद पर मुनहसिर होकर लगा होता है। बस फर्क इतना ही है। लिहाजा जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इल्मी जोग यानी सांख्य योग के जरिए जो आला हकीकत रूबरू होती है, वही आला हकीकत बेगरज अमली जोग के जरिए भी हासिल होती है। जो दोनों को मुसावी देखता है वही हकशनास होता है। दोनों आमाल का तरीका बताने वाला रमज आशना एक है, तरीका भी एक ही है। इबादत ख्वाहिशात का ईसार दोनों करते हैं, और नतीजा भी एक ही है। सिर्फ अमल के नजरियात दो हैं, एक रूह मुतलक यानी एक परमात्मा। معینہ عمل من اور حواس کا ایک مقررہ باطنی عمل ہے. جب عمل کی یہی شکل ہے تو باہر مندر چرچ بنا کر تمام دیوی دیوتاؤں کے بت یا شبیہ کی عبادت کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ بھارت میں ہندو کہلانے والا سماج یعنی در حقیقت وہ ابدی دینی ہے. ان کے آبا و اجداد نے ماورا سچائی کی تحقیق کر کے ملک اور غیر ملک میں اس کی تبلیغ کی. اس راہ پر چلنے والا دنیا میں کہیں بھی ہو ابدی دین والا ہے. اتنی بڑی عظمت والا ہندو سماج خواہشات کے زیر اثر مجبور ہو کر مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا. شری کرشن کہتے ہیں، ارجن، دیوتاؤں کی جگہ پر دیوتا نام کی کوئی طاقت نہیں ہے. جہاں کہیں بھی انسان کی عقیدت سر جھکاتی ہے، اس کے پس منظر میں ہی کھڑا ہو کر سمرا عطا کرتا ہوں، اسی کی عقیدت کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ میرا ہی وجود ہے. لیکن اس کی وہ عبادت کا طریقہ غیر مناسب ہے. ان کا سمرا فانی ہے. خواہشات نے جن کے علم کو سلب کر دیا ہے، وہ کم عقل لوگ یہی دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں. صالح لوگ دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں. ملکات ردیا والے یکش دیووں کو اور ملکات مضموم کے حامل آسیب کی عبادت کرتے ہیں، کڑی ریاضت کرتے ہیں. لیکن ارجن، وہ جسم میں موجود تمام مادے اور باطن میں موجود روح مطلق کو کمزور کرتے ہیں، نہ کہ عبادت کرتے ہیں. یقینی طور پر تو انہیں دنیاوی خصلت سے مزین جان. اس سے زیادہ شری کرشن کیا کہتے؟ انہوں نے صاف طور پر کہا، ارجن، پروردگار سبھی جانداروں کے دل میں مقام کرتا ہے، صرف اسی کی پناہ میں جا. عبادت کی جگہ دل میں ہے، باہر نہیں. پھر بھی لوگ پتھر، پانی، مندر، مسجد، دیوی دیوتاؤں کا پیچھا کرتے ہی ہیں. انہی کے ساتھ شری کرشن کی بھی ایک مورت گڑھ کر بنا لیتے ہیں. شری کرشن کی عبادت پر زور دینے والے اور تا عمر بت پرستی کی تردید کرنے والے بدھ کی بھی ایک مورت ان کے مقلدوں نے گڑھ لی اور لگے عبادت کرنے، یعنی چراغ دکھانے. جبکہ بدھ نے کہا تھا، آنند تتھاگت یعنی گوتم بدھ کی جسمانی عبادت میں وقت برباد نہ کرنا. مندر، مسجد، چرچ، زیارت گاہ، بت اور یادگاروں کے ذریعے پہلے ہونے والے عظیم انسانوں کی یادیں سنجوئی جاتی ہیں، جس سے ان کی حصول یابیوں کی یاد آتی رہے. عظیم انسانوں میں عورت اور مرد سبھی ہوتے آئے ہیں. جنک کی دختر سیتا پچھلے جنم میں ایک برہمن کی بیٹی تھی. اپنے پدر یعنی باپ کی ترغیب سے اعلی معبود کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ریاضت کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی. دوسرے جنم میں اس نے رام کو حاصل کیا اور خالص علم والی یعنی چنمے لافانی ابدی طاقت یعنی آدھی شکتی کی شکل میں معظمہ ہوئی. ٹھیک اسی طرح شاہی خاندان میں پیدا میرا میں روح مطلق کی عقیدت پھوٹ پڑی. سارا کچھ کا ایثار کر وہ معبود کی فکر میں لگ گئی، دقتیں جھیلی اور کامیاب رہی. ان کی یاد سنجونے کے لیے مندر بنے، یادگاریں بنی، تاکہ سماج ان کی نصیحتوں سے ترغیب حاصل کر سکے. میرا، سیتا یا اس جانب کا محقق ہر عظیم انسان ہماری مشعل راہ ہے. हमें उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी गलती क्या होगी अगर हम सिर्फ उनके कदमों में फूल चढ़ाकर, संदल लगाकर महज अपने फराइज को पूरा समझ बैठे। आम तौर पर जो जिसका नस्बुल ऐन होता है उसका मुजस्समा, तस्वीर, खड़ाऊं, उसका मकाम, ख्वाह उससे मुतालिक कुछ भी देखने सुनने पर मन में अकीदत उमड़ आती है, ये बजा ही है। हम भी अपने बंदा नवाज मुर्शिद की तस्वीर को कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो हमारी मिशले राह हैं। उन्हीं की तरगीब और हुक्म के मुताबिक हमें चलना है। जो मकाम उनका है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसका हुसूल हमारी भी मंजिल है, और यही उनकी हकीकी इबादत है। यहां तक तो ठीक है, जो दर हकीकत मिशले राह हैं उनकी बेहुर्मती ना करें, लेकिन उन पर फूल माला चढ़ाने को ही बंदगी मान बैठने से, इतने को ही भलाई का जरिया मान लेने से हम मंजिल मकसूद से बहुत दूर भटक जाएंगे। अपनी मशले राह की नसीहतों को दिल नशी करने और उस पर चलने की तरगीब कबूल करने के लिए ही यादगारों का इस्तेमाल है, चाहे उसे खानकाह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, विहार, गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दे लें, बशर्ते कि उन मरकजों का ताल्लुक दीन से हो। तो जिसका मुजस्समा है उसने क्या किया और क्या हासिल किया, कैसे रियाजत की, कैसे हासिल किया, सिर्फ इतनी ही तालीम लेने के लिए हम वहां पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए। लेकिन अगर उन जगहों पर अजीम इंसानों के कदमों के निशानात नहीं बताए गए, उनकी खूबियों के बयान नहीं किए गए, करके नहीं सिखाए गए, भलाई का इंतजाम नहीं मिला, तो वो जगह गलत है। वहां आपको सिर्फ अदामत मिलेगी, वहां जाने में आपका नुकसान है। जाती तौर पर घर घर, गली गली जाकर पैगाम पहुंचाने के मुकाबले में इज्तिमाई नसीहतों के मकामात की शक्ल में उन दीनी इदारों को कायम किया गया था, लेकिन वक्त के साथ आगे चलकर उन तरगीब देने वाले मकामात से ही बुत परस्ती और कदामतों ने दीन की जगह ले ली, यहीं से भटकाव की हालत पैदा हो गई। शरीयत यानी ग्रंथ। शरीयत का मुताला जरूरी है जिससे आप इस हिदायतशुदा तरीके को समझ सकें, जिसे जोग के मालिक श्री कृष्ण ने मुअय्यना अमल कहा है, और जब समझ में आ जाए तो फौरन करना शुरू कर दें। जहन से उतरने लगे तो दोबारा मुताला कर लें। ये नहीं कि किताब को हाथ जोड़कर चावल संदल छिड़क कर रख दें। किताब राहनुमा निशान है जो आखिरी अंजाम तक साथ देती है। देखते हुए आगे बढ़ते चलें अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। जब माबूद को दिल में बसा लेंगे तो वो माबूद ही किताब बन जाएगा। लिहाजा याद को संजोना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इन यादगारों की इबादत से मुतमईन हो जाना नुकसानदेह है। दीन यानी धर्म। बाब दो श्लोक 16 से 29 तक जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक बातिल चीज का वजूद नहीं है और हक की भी कभी कमी नहीं है। रूह मुतलक ही हक है, दायमी है, लाफानी, ना काबिले तब्दील और अबदी है। लेकिन वो रूह मुतलक ना काबिले फहम, मावराए हिस और तबीयत की तरंगों से मावरा है। अब तबीयत पर काबू कैसे हो? तबीयत को काबू में करके उस रूह मुतलक को पाने के तरीके खास का नाम अमल है। इस अमल को अमली जामा पहनाना ही दीन है, जिम्मेदारी है। गीता बाब 2 श्लोक 40 में लिखा हुआ है कि अर्जुन, इस अमली जोग में इब्तिदा का खात्मा नहीं है। उस अमल की शक्ल वाले दीन का जरा सा भी वसीला आवागमन के बहुत बड़े खौफ से नजात दिलाने वाला होता है। यानी इस अमल को अमली जामा पहना देना ही दीन है। उस मुअय्यना अमल यानी राह रियाजत को रियाजत कश की खसलत में मौजूद सलाहियत के मुताबिक चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। अमल को समझकर इंसान जब से शुरू करता है उस इब्तिदाई दौर में वो शुद्र है। आहिस्ता आहिस्ता तरीका पकड़ में आया तो वही वैश्य है। दुनिया के वबाल को झेलने की सलाहियत और बहादुरी आने पर वही इंसान क्षत्रिय और माबूद का मकाम हासिल करने की सलाहियत यानी हकीकी इल्म, खुसूसी इल्म यानी इल्हाम, उस वजूद पर मुनहसिर रहने की सलाहियत, ऐसी लियाकतों के आने पर वही ब्राह्मण है। लिहाजा जोग के मालिक श्री कृष्ण यानी गीता बाब 18 श्लोक 46 और 47 में कहते हैं कि खसलत में पाई जाने वाली सलाहियत के मुताबिक अमल में लगना फर्ज मनसबी है। कम वजनी होने पर भी फितरी तौर पर हासिल फर्ज मनसबी बेहतर है और सलाहियत हासिल किए बगैर ही दूसरों के तरक्की याफ्ता अमल का इत्तेबा भी मुजिर है। फर्ज मनसबी में मरना भी बेहतर है क्योंकि लिबास बदलने वाला तो बदल नहीं जाता, उसके वसीले का सिलसिला वहीं से फिर शुरू हो जाएगा जहां से छूटा था। जीना बजीना चढ़कर वो आला कामयाबी लाफानी मकाम को हासिल कर लेगा। इसी पर जोर देते हैं कि जिस रूह मुतलक से सारे जानदारों की तकलीक हुई है, जो सब जगह जारी वो सारी है, खसलत से पैदा हुई सलाहियत के मुताबिक उसकी अच्छी तरह इबादत करके इंसान आला कामयाबी हासिल कर लेता है। यानी मुअय्यना तरीके से एक रूह मुतलक का गौर फिक्र ही दीन है। दीन में दखल किसका है? इस मुअय्यना अमल को करने का इख्तियार किसे है? इसे साफ करते हुए जोग के मालिक ने बताया, अर्जुन, बहुत बड़ा गुनहगार भी अगर लाशरीक अकीदत से मुझे याद करता है यानी लाशरीक यानी बिला शिरकते गैर, मेरे सिवा दूसरे किसी को भी ना याद कर सिर्फ मुझे याद करता है, वो जल्द ही दीनदार हो जाता है। उसकी रूह दीन से मुजयन हो जाती है। लिहाजा श्री कृष्ण के मुताबिक दीनदार वो है जो एक रूह मुतलक के हुसूल के लिए मुअय्यना अमल पर कारबंद होता है। दीनदार वो है जो खसलत से मुअय्यना कुव्वत के मुताबिक माबूद की तहकीक में लगा है। आखिर में कहते हैं कि अर्जुन, सारे मजाहिब की फिक्र छोड़कर महज मेरी पनाह में हो जा, लिहाजा एक रूह मुतलक के लिए वक्फ इंसान ही दीनदार है। एक रूह मुतलक में अकीदत साकिन करना ही दीन है। उस एक रूह मुतलक के हुसूल के मुअय्यना अमल को करना दीन है। इस मकाम को हासिल करने वाला अजीम इंसान खुद इत्मीनान, अजीम इंसानों का उसूल ही दुनिया में वाहिद दीन है। उनकी पनाह में जाना चाहिए कि उन अजीम इंसानों ने कैसे उस रूह मुतलक को हासिल किया, किस रास्ते से चले। वो रास्ता हमेशा एक ही है, उस रास्ते से चलना दीन है। दीन इंसानी रविश है, इंसान के बर्ताव की चीज है। वो बर्ताव सिर्फ एक है, व्यवसायात्मिका। बुद्धि रेके है कुरु नंदना, यानी बाप दो श्लोक 41। इस अमली जोग में मुकर्ररा तरीका एक ही है, हवास की कोशिश और मन के कारोबार पर बंदिश लगाकर रूह में यानी आला तरीन ब्रह्म में जारी करना, यानी बाप 4 श्लोक 27। तब्दील दीन यानी धर्मांतरण। अबदी दीन के मखरज भारत में बदरिवाज यहां तक पनपे के मुसलमानों के हमलों के वक्त उनका दीन हमलावरों के हाथ का एक निवाला चावल खाने से, दो घूंट पानी पीने से बर्बाद होने लगा। बेदीन करार पाने वाले हजारों हिंदुओं ने खुदकुशी कर ली। दीन के लिए वो मरना जानते थे, लेकिन दीन समझे तब तो। दीन तो हो गया छुई मुई। छुई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है, लेकिन छूटते ही फिर ज्यों का क्यों हो जाता है। उनका अबदी दीन तो ऐसे मुरझाया कि कभी नहीं पनपा। यानी दीन का ताल्लुक रूह से है। जिस अबदी रूह को दुनियावी चीजें छू भी नहीं पाती, वो कहीं छूने खाने से बर्बाद होता है। आप तलवार से मरे और दीन छूने से मर गया, क्या सचमुच दीन बर्बाद हुआ? हरगिज नहीं। दीन के नाम पर कोई बदरिवाजी पल रही थी, वो बर्बाद हुई। जिन्होंने इस तरह दीन तब्दील कर लिया, क्या कोई दीन पा गए? हिंदू से मुसलमान बन जाना या एक तरह की बूदोबाश से दूसरे बूदोबाश में चले जाना दीन तो नहीं है। इस तरह मंसूबे के तहत साजिश का शिकंजा बनाकर जिन्होंने उन्हें बदला, क्या वो दीनदार थे? वो तो और भी बड़े बदरिवाजों के शिकार थे। हिंदू उसी में जाकर फंस गए। गैर तरक्की याफ्ता और गुमराह कबीलों को मुहसिब बनाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी, तलाक, वसीयत, लेन देन, सूद, गवाही, कसम, तौबा यानी कफारा, रोजी रोटी, खाना पीना, बूदोबाश वगैरह मामलात में एक मुआशरती इंतजाम दिया और बुत परस्ती, शिर्क, जिनाकारी, चोरी, शराब, जुआ, मां दादी वगैरह से शादी पर बंदिश लगाई और हैज वाली औरतों के साथ मुबाशिरत पर रोक लगाकर रोजे के दिनों में भी उसके लिए ढील दी। जन्नत ने बहुत सी हम उम्र अनछुई हूरों की बात कही। ये कोई दीन नहीं था, एक तरह का मौशरती निजाम था। ऐसा कुछ कहकर उन्होंने शहवत में डूबे हुए समाज को उधर से मोड़कर अपनी तरफ माइल किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे दीन बताया, उधर किसी का ख्याल ही नहीं है। उन्होंने बताया था कि जिस इंसान की एक भी सांस उस खुदा के नाम के बगैर खाली जाती है, उससे खुदा कयामत में वैसे ही पूछता है जैसे किसी गुनाहगार से उसके गुनाह के बदले में बाज पुर्स की जाए, जिसकी सजा है हमेशा हमेशा के लिए दोजख। कितने सच्चे मुसलमान हैं जिनकी एक भी सांस खाली ना जाती हो? करोड़ों में शाज ही कोई होगा, बाकी सभी की सांस खाली ही जाती है, जिसकी सजा वही है जो गुनाहगारों के लिए है। बताने की जरूरत नहीं दोजख। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम दिया कि जो किसी को भी परेशान नहीं करता, जानवरों को भी तकलीफ नहीं देता। वो खुदा की जानिब से निदाए गैब सुनता है। ये सभी जगहों के लिए था, लेकिन बाद वालों ने एक रास्ता निकाल लिया कि मक्का में एक मस्जिद है जिसमें हरी घास नहीं तोड़नी चाहिए, उस मस्जिद में किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, वहां किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और घूम फिर कर वो उसी दायरे में खड़े हो गए। क्या खुदा की जानिब से निदाए गैब सुनने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मस्जिद बनवाई थी? कभी किसी मस्जिद में कोई आयत उतरी? ये मस्जिद तो उनका मकाम रही है जिसमें उनकी यादगार महफूज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम को तबरेज ने समझा था, मंसूर ने जाना था, इकबाल ने जाना था, लेकिन वो मजहबी लोगों के शिकार हुए, उन्हें तकलीफें दी गईं, सुकरात को जहर दिया गया क्योंकि वो लोगों को ला मजहब बना रहा था। ऐसा ही इल्जाम ईसा पर भी लगाया, उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया क्योंकि वो तातील के दिन भी काम करते थे, नाबीना लोगों को बीनाई अता करते थे। ऐसा ही भारत में भी है। जब भी कोई हकशनास अजीम इंसान सच की तरफ इशारा करता है तो इन मंदिर, मस्जिद, मठ, फिरकों, जियारतगाहों से जिनकी रोजी रोटी चलती है हाय तौबा करने लगते हैं, बेदीनी बेदीनी शोर मचाने लगते हैं। किसी को उनसे लाखों करोड़ों की आमदनी है तो किसी की दाल रोटी ही चलती है। हकीकत आम होने से अपनी रोजी रोटी को खतरा दिखाई पड़ता है, वो सच्चाई को पनपने नहीं देते और न कभी पनपने दे सकते हैं। इसके सिवा उनकी मुखालिफत की कोई वजह नहीं है। कुरूने माजी में ये याद क्यों महफूज की गई थी उसका उन्हें एहसास नहीं है। गृहस्थों का इख्तियार यानी गृहस्थों का अधिकार। उमूमन लोग पूछते हैं कि जब अमल की यही शक्ल है जिसमें यकसुई, जब्ते नफ्स, मुसलसल फिक्र और तसव्वुर करना है, तब तो गीता आम घर बार वालों के लिए बेकार है, तब तो गीता सिर्फ फकीरों के लिए है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता बुनियादी तौर पर उसके लिए है जो उस राह का राही है, और जज़ई तौर पर उसके लिए भी है जो इस राह का राही बनना चाहता है। गीता तमाम इंसानों के लिए बराबर का सरोकार रखती है। सालेह गृहस्थों के लिए तो उसका खास इस्तेमाल है क्योंकि वहीं से अमल की इब्तिदा होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन इस बेगरज अमली जोग में इब्तिदा का कभी खात्मा नहीं होता। इस पर की जाने वाली थोड़ी सी भी रियाजत आवागोन के बहुत बड़े खौफ से नजात दिलाकर ही छोड़ती है। आप ही बताएं थोड़ी रियाजत कौन करेगा, गृहस्थ या तारिकुद दुनिया? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा वक्त देगा, ये इसके लिए ही है। बाब 4 श्लोक 36 में फरमाया, अर्जुन तू अगर सारे गुनाहगारों से भी ज्यादा गुनाहगार है तब भी इल्म की कश्ती से बिला शक पार हो जाएगा। ज्यादा गुनाहगार कौन है, जो मुसलसल लगा है या जो अभी लगना चाहता है? लिहाजा सालेह ग्रस्त की जिंदगी से ही अमल की शुरुआत है। बाब 6 श्लोक 37 से 45 में अर्जुन ने सवाल खड़ा किया, बंदा परवर, कमजोर कोशिश वाला अकीदतमंद इंसान आला नजात को ना हासिल कर किस बदहाली को पहुंचता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जोग से डिगे हुए कमजोर कोशिश वाले इंसान का भी कभी खात्मा नहीं होता। वो जोग से बदउनवान بامرتبہ لوگوں یعنی پاک صداقت برتاؤ والے ہی بامرتبہ لوگ ہیں کہ یہاں جنم لے کر جوگی خاندان میں داخلہ پا جاتا ہے، وسیلے کے جانب اس کا رجحان ہوتا ہے اور تمام جنموں کا سفر طے کرتا ہوا وہیں پہنچ جاتا ہے جس کا نام اعلی نجات یعنی اعلی مقام ہے۔ یہ کمزور کوشش کون کرتا ہے؟ جوگ سے بدعنوان ہو کر وہ کہاں جنم لیتا ہے؟ گرہست ہی تو بنا، وہیں سے وہ ریاضت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ باب 9 شلوک 30 میں انہوں نے کہا کہ بے حد بد کردار بھی اگر لا شریک عقیدت سے مجھے یاد کرنے لگے تو وہ صوفی ہی ہے، کیونکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ صحیح راہ پر لگ گیا ہے۔ بے حد بد کردار کون ہوگا؟ جو یاد الہی میں لگ گیا وہ، یا وہ جس نے ابھی شروع ہی نہیں کیا؟ باب 9 شلوک 32 میں کہا، عورت، ویشیہ، شدر اور گناہگار یونیوں والے ہی کیوں نہ ہوں، میری پناہ میں آ کر اعلی نجات حاصل کرتے ہیں۔ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، شری کرشن ایسا کچھ نہیں کہتے۔ بے حد بد کردار نیچ ہی کیوں نہ ہو، میری پناہ میں آ کر اعلی نجات حاصل کرتے ہیں۔ لہذا گیتا تمام انسانوں کے لیے ہے۔ صالح گرست کی زندگی سے ہی اس عمل کی ابتدا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ صالح گرہست جوگی بن جاتا ہے، مکمل تارک الدنیا ہو جاتا ہے اور عنصر کا بدی ہی دیدار کر کے روح مطلق سے نسبت پا جاتا ہے، جسے شری کرشن نے کہا کہ خواتین یعنی استریاں۔ گیتا کے مطابق جسم ایک لباس ہے۔ جس طرح بوسیدہ لباس کو ترک کر انسان نیا لباس قبول کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح اس جسم کے تمثیلی لباس کو ترک کر دوسرا جسم یعنی لباس قبول کر لیتی ہے۔ آپ جرم یعنی پنڈ کی شکل میں عورت ہوں خواہ مرد، یہ جسم کی شکلیں ہیں۔ دنیا میں انسان صرف دو طرح کے ہیں، فانی اور لا فانی۔ تمام جانداروں کا جسم فانی خواہ تغیر پذیر ہے۔ من کے ساتھ حواس جب ساکن ہو جاتے ہیں تب وہی لا فانی انسان ہے، اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد الہی کی حالت ہے۔ عورتوں کے متعلق کبھی عزت تو کبھی بے عزتی کا خیال سماج میں بنا ہی رہتا ہے، لیکن گیتا کے ماورائی کلام میں یہ صاف ظاہر ہے کہ شدر یعنی کم علم، ویشیہ یعنی طریقہ کار کا حامل، عورت خواہ مرد کوئی کیوں نہ ہو، میری پناہ میں آ کر اعلی نجات کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا اس صراط مستقیم میں عورتوں کا بھی وہی مقام ہے جو مردوں کا ہے۔ مادی خوشحالی یعنی بھوتک سمردھی۔ گیتا اعلی افادہ تو دیتی ہے، ساتھ ہی انسانوں کے لیے ضروری مادی چیزوں کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ باب 9 شلوک 20-22 میں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مقررہ طریقے سے میری عبادت کر کے بدلے میں جنت کی خواہش کرتے ہیں، انہیں عظیم جنت کی دنیا حاصل ہوتی ہے، میں عطا کرتا ہوں، جو مانگو گے وہ مجھ سے حاصل ہوگا، لیکن استعمال کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے تعیشات بھی فانی ہیں، انہیں دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ ہاں، مجھ سے منسوب ہونے کی بنا پر وہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ میں بھلائی کی تمثیل ہوں، میں انہیں تعیشات دیتا ہوں اور آہستہ آہستہ الگ کرا کر پھر انہیں کار ثواب میں لگا دیتا ہوں۔ میدان یعنی کشیتر، جس روح مطلق کی پاک زبان کا کلام یہ گیتا ہے، انہوں نے خود کشیتر کا تعارف کرایا ہے کہ ارجن، یہ جسم ہی میدان ہے جس میں بویا ہوا بھلے اور برے عمل کا بیج تاثر یعنی سنسکار کی شکل میں اگتا اور بعد میں آرام و تکلیف کی شکل لے کر تلذذات کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی دولت نیچ یونیوں میں لے جانے کے لیے ہے، جبکہ روحانی دولت پروردگار روح مطلق سے نسبت دلاتی ہے۔ مرشد کی غربت سے ان میں فیصلہ کن جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔ شرح نویسوں کا قول ہے، ایک میدان عمل باہر ہے اور دوسرا من کے اندر ہے۔ گیتا کا مطلب خارجی ہے، دوسرا داخلی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ مقرر ایک بات کہتا ہے لیکن سننے والے اپنی سمجھ کے مطابق ہی اسے پکڑ پاتے ہیں، لہذا مختلف معنی محسوس ہوتے ہیں۔ راہ ریاضت پر بتدریج چل کر جو بھی انسان شری کرشن کے سطح پر کھڑا ہو جائے گا، تو جو منظر شری کرشن کے سامنے تھا وہی اس کے بھی سامنے ہوگا۔ وہی عظیم انسان ان کے دلی احساسات کو، گیتا کے اشاروں کو سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ گیتا کا ایک بھی شلوک خارجی عکاسی نہیں کرتا۔ کھانا، پہننا، رہنا آپ جانتے ہی ہیں، بود و باش، تسلیم شدگی، دنیاوی رسم و رواج میں جگہ، وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی قدرت کی دین ہے۔ اس میں شری کرشن آپ کو کون سا انتظام دیں؟ کہیں لڑکیوں کی زیادتی ہے، کئی شادیاں ہوتی ہیں، تو کہیں ان کی تعداد کم ہے، کہیں کئی بھائیوں کے درمیان ایک بیوی رہ لیتی ہے۔ اس میں شری کرشن کون سا انتظام دیں؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان میں آبادی کی کمی ایک مسئلہ بن گئی، تو 30 بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت کو مدر لینڈ یعنی مادر وطن کے خطاب سے نوازا گیا۔ وید کے وقت کے بھارت میں پہلے 10 بچے پیدا کرنے کا دستور تھا، اب ایک یا دو بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے کا نعرہ لگ رہا ہے۔ شاید وہ نہ رہیں تو ملک کے لیے فکر کی بات نہیں، مسائل کا حل ہی ہوتا ہے۔ شری کرشن اس میں کون سا انتظام دیں؟ شرف یعنی شریع، خواہش، غصہ، لالچ، فریفتگی کے کہیں مدرسے نہیں کھلے ہیں، پھر بھی ان عیوب میں بچے بڑوں اور ہوش مندوں سے کہیں زیادہ ماہر نکلتے ہیں۔ اس میں شری کرشن کیا نصیحت دیں؟ یہ سب کچھ تو قدرتی طور پر اپنے آپ ہوتا ہے۔ کبھی وید پڑھائے جاتے تھے، تیر اندازی اور جنگ گرز کی تعلیم دی جاتی تھی، آج ان کی تعلیم کون حاصل کرتا ہے؟ آج تو تمنچا چلا رہے ہیں، خودکار آلات کا زمانہ ہے۔ کبھی رتھ ہانکنا سیکھنا پڑتا تھا، گھوڑوں کی لیت پھینکنی پڑتی تھی، آج موٹروں کا تیل صاف کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں شری کرشن کیا بتائیں؟ کہہ دیں کہ گھوڑوں کی اس طرح مالش مت کرو، باہر آپ کو کیسا انتظام دیں؟ پہلے سواہا لفظ بولنے سے بارش ہوتی تھی، آج من کے موافق فصل لینے لگے ہیں۔ جوک کے مالک کہتے ہیں کہ قدرت سے پیدا ہوئی صفات کے زیر اثر مجبور ہو کر انسان حالات کے مطابق ڈھلتا ہی رہتا ہے۔ صفات خود انہیں اپنے مطابق ڈھالنے میں قادر ہیں۔ علم مادیات، علم معاشرت، علم الاقتصاد، علم کلام، وہ گھڑتا ہی رہتا ہے۔ ایک ہی چیز ایسی ہے جو انسان نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، وہ ہے تو اسی کے قریب لیکن وہ اس سے غافل ہے۔ گیتا سن کر ارجن کی وہی یادداشت لوٹ آئی تھی، وہ یاد ہے روح مطلق کی جو دل کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے بہت دور ہے۔ اسی کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن راستہ نہیں پاتا، صرف بھلائی کی راہ سے ہی انسان ناواقف ہے۔ فریفتگی کا پردہ اتنا موٹا ہے کہ اس جانب سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس عظیم انسان نے آپ کے لیے وقت دیا ہے، اس عمل کو صاف کیا ہے جسے کرنے کی ہدایت گیتا میں ہے۔ گیتا خاص طور سے یہی عطا کرتی ہے، مادی چیزیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں لیکن شرف کے مقابلے میں دنیا داری ناقابل شمار ہے۔ جوگ کا عطا کنندہ یعنی یوگ پرداتا، جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق فلاح کی راہ کا علم، اس کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور اس کا حصول مرشد سے ہوتا ہے۔ ادھر ادھر زیارت گاہوں میں بہت بھٹکنے یا بہت محنت سے یہ تب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی صوفی کے ذریعے نہ حاصل کیا جائے۔ باب 4 شلوک 34 میں شری کرشن نے کہا کہ ارجن، تو کسی رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں جا کر اچھی طرح آداب بجا کر صاف دل سے خدمت کر کے سوال کر کے اس علم کو حاصل کر۔ حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے کسی عظیم انسان کی قربت اور ان کی خدمت گزاری، ان کے مطابق چل کر جوگ کی منزل حاصل کرنے کے دور میں حاصل کرے گا۔ باب 18 شلوک 18 میں انہوں نے بتایا کہ کامل یعنی حق شناس عظیم انسان مجھے علم جاننے کا طریقہ اور قابل علم روح مطلق تینوں عمل کے محرک ہیں، لہذا شری کرشن کے مطابق عظیم انسان ہی عمل کے ذریعے ہیں، نہ کہ صرف کتاب۔ کتاب تو ایک نسخہ ہے، نسخہ یاد کرنے سے کوئی صحت مند نہیں ہوتا بلکہ اسے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ دوزخ یعنی نرک۔ باب 16 شلوک 16 میں دنیاوی دولت کا بیان کرتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ تمام طرح سے گمراہ طبیعت والی فریفتگی میں پھنسے دنیاوی خصلت والے انسان ناپاک جہنم میں گرتے ہیں۔ سوال فطری ہے کہ جہنم ہے کیسا اور کسے کہتے ہیں؟ اسی تسلسل میں صاف کرتے ہیں کہ مجھ سے کینہ رکھنے والے بدذات لوگوں کو میں بار بار شیطانی شکلوں یعنی یونیوں میں گراتا ہوں، تکلیف دہ شیطانی یونیوں میں گراتا ہوں۔ یہی جہنم ہے۔ اس جہنم کا دروازہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خواہش، غصہ اور لالچ جہنم کے تین دروازے ہیں جس میں دنیاوی دولت ساخت ہوتی ہے، لہذا بار بار حشرات الارض جانور وغیرہ یونیوں میں آنا ہی جہنم یعنی دوزخ ہے۔ بخشش جرم یعنی پنڈ دان۔ پہلے باب میں غمزدہ ارجن کو اندیشہ تھا کہ جنگ کی بنا پر ہونے والے قتل عام سے مرحومین بخشش جرم اور نظر سے محروم رہ جائیں گے، مرحومین گر جائیں گے۔ اس پر بندہ نواز شری کرشن نے کہا کہ ارجن، तेरे अंदर ये जहालत कहां से आ गई? बख्शिशे जिर्म के रिवाज को श्री कृष्ण ने जहालत बताया और बताया कि जिस तरह बोसीदा लिबास को तर्क कर इंसान नया लिबास पहन लेता है, ठीक उसी तरह ये रूह बोसीदा जिस्म को तर्क कर उसी वक्त जिस्मानी शक्ल वाला नया लिबास कबूल कर लेती है। यहां जिस्म महज एक लिबास है और जब रूह ने सिर्फ लिबास बदला वो फना हुई नहीं, फानी जिस्म को ही बदला है। उसके इंतजामात साबिक बदस्तूर हैं तो खाना यानी बख्शिश जिर्म, आसनी, पलंग, सवारी, मकान या पानी वगैरह से किसकी आसूदगी दरकार है? यही वजह है कि जोग के मालिक ने उसे जहालत कहा। बाप 15 श्लोक 7 में इसी पर जोर देते हुए कहते हैं कि ये रूह मेरा अबदी जुज है, शक्ल है और मन के साथ पांचों हवास के कारोबार से पैदा होने वाले तासुरात यानी संस्कार को लेकर दूसरे जिस्म को कबूल कर लेती है और मन के साथ 6 हवास के जरिए अगले जिस्म में तायुशात का लुत्फ उठाती है। रूह ने जिस जिस्म को कबूल किया वहां भी ऐशो इशरत मौजूद है, फिर बख्शिशे जिर्म की क्या जरूरत है? इधर एक जिस्म को तर्क किया, उधर दूसरे जिस्म को कबूल किया, वो रूह सीधे उस जिस्म में दाखिल हो जाती है। दरमियान में कोई पड़ाव नहीं, कोई जगह नहीं, तो हजारों पुश्तों के मरहूमीन का लामहदूद वक्त से पड़ा रहना और उनका रिस्क खानदानी रविश के मुताबिक तय करना और कफस में कैद परिंदे की तरह उनकी छटपटाहट जवाल महज एक जहालत है। लिहाजा श्री कृष्ण ने इसको जहालत बताया। अजाबो सवाब यानी पाप और पुण्य। इस सवाल पर मुआशरे में तमाम गलत फहमियां हैं, लेकिन जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक मलकात रद्दिया से पैदा हुए ये ख्वाहिश और गुस्सा ऐशो इशरत से कभी ना आसूदा होने वाले बहुत बड़े गुनहगार हैं। यानी ख्वाहिश ही वाहिद गुनहगार है। अजाब का मखरज हवस है, ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात रहती कहां हैं? श्री कृष्ण ने बताया कि हवास, मन और अक्ल इनके रहने के मकामात बताए जाते हैं। जब उयूब जिस्म में नहीं मन में ही होते हैं तो जिस्म की सफाई करने से क्या फायदा होगा? बकौल श्री कृष्ण इस मन की तहारत होती है नाम के विर्द से, तसव्वुर से, उस दौर के किसी रमज शनास अजीम इंसान की खिदमत से, उनमें अकीदत से, जिसके लिए बाप 4 श्लोक 34 में हौसला अफजाई फरमाते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, खिदमत और सवाल करके उस इल्म को हासिल कर जिससे सभी अजाब खत्म हो जाते हैं। बाप 3 श्लोक 13 में उन्होंने कहा कि यज्ञ का तबर्रुक खाने वाले आबिद हजरात तमाम गुनाहों से नजात पा जाते हैं और जो जिस्म हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं वो गुनाहगार अजाब ही खाते हैं। यहां यज्ञ फिक्र का एक मुअय्यना तरीका है जिससे मन में मौजूद मुतहर्रिक व साकिन हर शय के दुनियावी तासुरात यानी संस्कार जल जाते हैं, बाकी महज रब ही बचता है। लिहाजा जिस्म की पैदाइश की जो वजह है वही अजाब है, और जो उस लाफानी उनसुर को दिलाने वाला है जिसके बाद कभी जिस्म हासिल ना करना पड़े वही सवाब है। बाब 7 श्लोक 29 में कहते हैं कि मेरी पनाह में होकर जईफी व मौत और उयूब से आजाद होने के लिए कोशां, सालिहीन जिन इंसानों का गुनाह खत्म हो गया है, वो मुकम्मल जात मुतलक को सारे आमाल, सारी रूहानियत को और मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो मुझे जानकर मेरे ही अंदर मौजूद रहते हैं, लिहाजा अमले सवाब वो है जो ज़ईफी और मौत और उयूब से ऊपर उठाकर बरहक की जानकारी और उसी माबूद से हमेशा के लिए मंसूब कराता है, और जो आवागमन, ज़ईफी और मौत दुख पहुंचाने वाले उयूब के दायरे में घुमा कर रखता है, वही अमल अजाब है। बाब 10 श्लोक 3 में कहते हैं, जो मुझ आवागोन से आरी, इब्तिदा और इंतहा से मुबर्रा अजीम रब्बुल आलमीन को बदी ही दीदार के साथ जान लेता है, वो इंसान फना पजीर इंसानों में इल्मदा है, और ऐसा इल्म रखने वाला तमाम अजाबों से नजात पा लेता है। लिहाजा बदी ही दीदार के साथ ही सारे अजाबों से छुटकारा मिलता है। लुब्बे लवाब यह है कि बार बार आवागमन की वजह ही अजाब है, और जो इससे बचाकर दायमी रूह मुतलक की तरफ मुकातिब करा दे, आला सुकून को हासिल करा दे, वही अमल सवाब है। सच बोलना सिर्फ अपनी मेहनत का खाना, औरतों के साथ मां जैसा बर्ताव, ईमानदारी वगैरह भी इस नेक अमल के मददगार हिस्से हैं, लेकिन बेहतरीन सवाब है रूह मुतलक का हुसूल। जो वाहिद माबूद की अकीदत को तोड़ता है वो अजाब है। सारे आबिद एक, यानी संत सब एक। गीता बाब 4 श्लोक 1 में बंदरवास श्री कृष्ण ने बताया कि इस लाफानी जोक को कल्प यानी बदलाव के शुरू में मैंने सूरज के मुतालिक कहा था, लेकिन श्री कृष्ण के मां सबक तारीख क्वाह दीगर किसी भी शरीयत में कृष्ण के नाम का जिक्र नहीं मिलता। दर हकीकत श्री कृष्ण एक कामिल जोक के मालिक हैं, वो एक गैर मरई और लाफानी मकाम वाले हैं। जब कभी रूह मुतलक से मिलाने वाले अमल यानी जोक की शुरुआत की गई, तो उसी मकाम पर फायज किसी अजीम इंसान ने की, चाहे वो राम हो या आरिफ जरथुस्त्र ही क्यों ना रहे हों। बात के वक्त में यही नसीहत हजरत ईसा अलैहि सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुरु नानक वगैरह चाहे जिस किसी ने दी कृष्ण ने ही। लिहाजा सभी अजीम इंसान एक ही हैं, सब के सब एक ही मरकज पर पहुंचकर एक ही शक्ल को हासिल करते हैं। ये मर्तबा एक इकाई है, तमाम इंसान इस रास्ते पर चलेंगे, मगर जब हासिल करेंगे एक ही मर्तबे को हासिल करेंगे। ऐसे मकाम को हासिल करने वाले आबिद का जिस्म महज एक मकान भर रह जाता है, वो खालिस खुद कफील हैं। ऐसी हालत वालों ने कभी कुछ कहा तो वो एक जोक के मालिक ने ही कहा। आबिद कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है, मशरिक क्वाह मगरिब में, सियाह या सफेद खानदान में, पहले से ही मुरव्विजा किन्हीं मजहबों के मानने वालों के दरमियान, ख्वाह कम अक्ल कबीलों में, आम सी जिंदगी बसर करने वाले गरीब ख्वाह अमीरों में पैदा होकर भी आबिद उनकी रस्म रिवाज वाला नहीं होता। वो तो अपनी मंजिल मकसूद रूह मुतलक को पकड़कर अपने मकसद यानी रूह मुतलक की जानिब बढ़ जाता है, वही हो जाता है। उनकी नसीहतों में जात पात, नस्ली तफरुखा और अमीर और गरीब की दीवारें नहीं रहती हैं, यहां तक कि उनकी नजर में औरत और मर्द का फर्क भी नहीं रह जाता। यानी देखें गीता 15वां बाब श्लोक 16। द्वाभिमौ पुरुषों लोके, दुनिया में ये दो तरह के इंसान हैं। अजीम इंसानों के बाद उनके पैरों अपना फिरका बनाकर महदूद हो जाते हैं। किसी अजीम इंसान के पैरों यहूदी हो जाते हैं तो किसी के पैरों ईसाई, मुसलमान, सनातनी वगैरह हो जाते हैं। लेकिन इन दीवारों से संत यानी आबिद का ताल्लुक कभी भी नहीं होता। आबिद ना कोई फिरका परस्त है और ना किसी जात का, आबिद आबिद है। उसे किसी मुआशरती जमात में ना समेटें। लिहाजा दुनिया भर के आबिदों की चाहे किसी कबीले में उनकी पैदाइश हुई हो, चाहे किसी मजहब यानी फिरके वाले उनकी इबादत ज्यादा करते हों, किसी फिरका बंदी के जेरे असर ऐसे आबिदों की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गैर जानिबदार यानी खुद मुख्तार है। दुनिया के किसी भी जगह पर पैदा हुआ आबिद मजम्मत के काबिल नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने अंदर मौजूद आलिमुल गैब यानी रूह मुतलक को कमजोर करता है, अपने को रूह मुतलक से दूर कर लेता है, खुद अपना नुकसान करता है। दुनिया में पैदा होने वालों में अगर आपका कोई सच्चा खैर ख्वाह है तो आबिद ही है। लिहाजा उनके मुतालिक रवादारी का होना दुनिया भर के लोगों का बुनियादी फर्ज है। उसमें कोताही करना खुद को धोखा देना है। वेद। गीता में वेद का तस्करा बहुत आया है, लेकिन कुल मिलाकर वेद महज राहनुमा निशान है यानी माइलस्टोन। मंजिल तक पहुंच जाने पर इंसान के लिए उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। बाब 2 श्लोक 45 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वेद तीनों सिफात तक ही रोशनी देने में कादिर है, तू वेदों के काम के दायरे से ऊपर उठ। बाब 2 श्लोक 46 में कहा, हर तरफ से भरी हुई पाक और साफ झील के हासिल होने पर छोटे तालाब से इंसान का जितना वास्ता रह जाता है, अच्छी तरह माबूद का इल्म रखने वाले अजीम इंसान यानी ब्राह्मण का वेदों से उतना ही वास्ता रह जाता है। लेकिन दूसरों के लिए तो उनका इस्तेमाल है ही। बाब 8 श्लोक 28 में उन्होंने कहा, अर्जुन मुझे उनसुर के साथ अच्छी तरह जान लेने पर जोगी वेद, यज्ञ, रियाजत, सदका वगैरह के नेक समरे को पार कर अबदी मकाम को हासिल कर लेता है। यानी जब तक वेद जिंदा हैं, यज्ञ करना बाकी है, तब तक अबदी मकाम का हुसूल नहीं है। बाप 15 श्लोक 1 में बताया, ऊपर रूह मुतलक ही जिसकी जड़ है, नीचे हशरातुल अर्ज तक कुदरत जिसकी शाखें दर शाखें हैं। दुनिया ऐसा पीपल का एक लाफानी दरख्त है, जो इसे जड़ के साथ जानता है वो वेद का आलिम है। इस इल्म का मदरक अजीम इंसान है, उसके जरिए हिदायत करदा यादे इलाही है। किताब ख्वाह मकतब भी उन्हीं की तरफ तरगीब देते हैं। ओम। श्री कृष्ण की रहबरी में ओम के विर्द का उसूल पाया जाता है। बाब 7 श्लोक 8 ओमकार मैं हूं। बाब 8 श्लोक 13 ओम का विर्द और मेरा तसव्वुर कर। बाब 9 श्लोक 17 काबिले इल्म ताहिर ओमकार मैं हूं। बाब 10 श्लोक 33 हुरूफ में आ से शुरू होने वाला अकार हूं। बाब 10 श्लोक 25 जबानों में एक हर्फ मैं हूं। बाब 17 श्लोक 23 ओम तत् और सत जात मुतलक का मजहर है। बाब 17 श्लोक 24 यज्ञ सदका और रियाजत के आमाल की इब्तिदा ओम से ही होती है, लिहाजा श्री कृष्ण के मुताबिक ओम का विर्द बेहद जरूरी है, जिसका तरीका किसी पहुंचे हुए अजीम इंसान से सीखें। गीता में बयान किया गया इल्म ही खालिस याददाश्त मनु यानी मनुस्मृति, गीता मौर्य से अव्वल महाराज मनु से भी पहले जाहिर हुई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम ययम। अर्जुन, इस लाफानी जोक को मैंने कल्प यानी बदलाव की इब्तिदा में सूरज से कहा और सूरज ने मनु से कहा, मनु ने उसे सुनकर अपनी याददाश्त में कबूल किया, क्योंकि सुनी हुई चीज मन की याददाश्त में ही महफूज की जा सकती है। इसी को मनु ने राजा इश्वाकु से कहा, इश्वाकु से शाही आरिफों ने जाना और इस अहम दौर से ये लाफानी जोग इस दुनिया में पोशीदा हो गया। शुरू में कहने और सुनने की रिवायत थी, लिखा भी जा सकता है ऐसा तसव्वुर नहीं था। मनु महाराज ने इसे जहनी तौर पर कबूल किया और याददाश्त की रिवायत मुरव्वजा की, लिहाजा ये गीता में बयान किया गया इल्म ही खालिस याददाश्त मनु यानी मनुस्मृति है। बंदा परवर ने ये इल्म मनु से भी पहले सूरज से कहा तो उसे याददाश्त सूरज यानी सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते? दरअसल सूरज रोशन जदा कादिर मुतलक यानी परमात्मा का वो हिस्सा है जिससे इंसानी तकलीफ हुई। बंदा परवर श्री कृष्ण फरमाते हैं, मैं ही अव्वल जीहिस यानी चेतन बशक्ले तुख्म पिदर हूं, कुदरत हमल कबूल करने वाली मादर है, वो बशक्ले तुख्म पिदर सूरज है। सूरज जाते मुतलक की वो अजीम ताकत है जिसने इंसान की तकलीफ की, वो कोई फर्द नहीं तुख्म है। जहां जाते मुतलक के उस पुरनूर जलाल से इंसान की पैदाइश हुई, उस जलाल में वो गीता में बयान किया गया इल्म भी नश्र किया यानी सूरज से कहा। सूरज ने अपने पिसर मनु से कहा, लिहाजा वो याददाश्त मनु है यानी मनुस्मृति है। सूरज कोई फर्द नहीं तुख्म है। बंदा परवर श्री कृष्ण फरमाते हैं, अर्जुन वही कदीम जोग में तेरे वास्ते कहने जा रहा हूं, तू मेरा अजीज बंदा है, सादिक दोस्त है। अर्जुन जहीन था, सादिक रास्त गो था, उसने सवाल पर सवालों की कतार खड़ी कर दी कि आपकी पैदाइश तो अब हुई है और सूरज की पैदाइश तो बहुत पहले हुई है, उसे आपने ही सूरज से कहा, यह मैं कैसे मान लूं? इस तरह 20-25 सवालात उसने खड़े किए, लिहाजा गीता की इख्तिताम तक उसके सारे सवालात खत्म हो गए। तब बंदा परवर ने जो सवालात अर्जुन नहीं कर सकता था, जो उसके लिए मुफीद थे, उन सवालात को खुद उठाया और हल दिया। बिल आखिर बंदा परवर ने फरमाया, अर्जुन क्या तूने मेरी नसीहतों को यकसु दिमाग होकर सुना? क्या फरीफ्तगी से पैदा हुई तेरी ला इल्मी खत्म हुई? अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाचा,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव।
बंदा परवर, मेरी फरीफ्तगी खत्म हुई, मैंने स्मृति यानी याददाश्त को हासिल कर लिया है। सिर्फ सुना भर नहीं बल्कि स्मृति याददाश्त में कबूल कर लिया है। मैं आपके हुक्म के मुताबिक अमल करूंगा, जंग करूंगा। उसने कमान उठा ली, जंग हुई, फतेह हासिल की, एक खालिस इख्तदार का कयाम हुआ और एक दीनी शरीयत की शक्ल में वो कदीमी दीनी शरीयत गीता फिर से नशर व इशात में आ गई। गीता आपकी अव्वल दीनी शरीयत है। यही याददाश्त मनु यानी मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी याददाश्त में कबूल किया था। मनु के सामने दो किताबों का तस्करा है, एक तो पिदर से हासिल हुई गीता, दूसरे वेद मनु के सामने नाजिल हुए। तीसरी कोई किताब मनु के दौर में जाहिर नहीं हुई थी। उस वक्त लिखने लिखाने का रिवाज नहीं था, इसलिए इल्म को शुनीदा यानी सुनने और याददाश्त के खिरतास यानी कैनवस पर नक्श करने का रिवाज था, जिनसे इंसानों की तकलीफ हुई। तकलीफ के अव्वल इंसान इन मनु महाराज ने वेद को शुनीदा यानी श्रुति और गीता को याददाश्त यानी स्मृति की इज्जत अता की। वेद मनु के सामने नाजिल हुए थे, उन्हें सुने ये सुनने के काबिल हैं। बाद में भले ही उन्हें भूल जाएं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन गीता स्मृति याददाश्त है, हमेशा याद रखें। यह हर इंसान को हमेशा रहने वाली जिंदगी, हमेशा रहने वाला सुकून, हमेशा रहने वाली खुशहाली और शौकतों से लबरेज जिंदगी हासिल कराने वाला खुदादाद नगमा है। बंदा परवर ने फरमाया, अर्जुन अगर तू अनानियत यानी घमंड के तहत मेरी नसीहतों को नहीं सुनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यानी गीता की नसीहतों को नजरअंदाज करने वाला बर्बाद हो जाता है। बाप 15 के आखिरी श्लोक यानी बाप 15 20वें श्लोक में बंदा परवर ने फरमाया, इति गुह्यतमम शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ। ये बसे गए राज से भी बेहद बसे गए राज शरीयत मेरे जरिए कही गई, इसे उनसुर से जानकर तू सारे इल्मों और आला शरफ को हासिल कर लेगा। बाप 16 के आखिरी दो श्लोकों में फरमाया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। इस तरीके शरीयत को तर्क कर ख्वाहिशात से रागिब होकर दूसरे तरीकों से जो याद करते हैं उनकी जिंदगी में ना सुख है ना खुशहाली है और ना आला नजात ही है। तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। लिहाजा अर्जुन, तेरे फरीजे और गैर फरीजे के इंतजामात के तहत ये शरीयत ही सनद है, इसको अच्छी तरह मुताला कर, उसके बाद अमल कर। तू मुझ में कयाम करेगा, लाफानी मकाम को हासिल कर लेगा, हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी, हमेशा रहने वाला सुकून और शौकत को हासिल कर लेगा। गीता याददाश्ते मनु यानी मनुस्मृति है। और बंदा परवर श्री कृष्ण के मुताबिक गीता ही दीनी शरीयत है, दूसरी कोई शरीयत नहीं, कोई दूसरी याददाश्त यानी स्मृति नहीं है। समाज में मुरव्वजा मुख्तलिफ किस्म की स्मृतियों यानी याददाश्तें चंद राजाओं की सरपरस्ती में लिखी मुआशरे में ऊंच नीच की दीवार खड़ी करने, इसे कायम रखने के तरीके हैं। मनु के नाम पर शायशुदा मजकूरा याददाश्त मनु यानी मनुस्मृति में मनु के दौर के माहौल की अक्कासी नहीं है। असल याददाश्त यानी मनुस्मृति गीता एक कादिर मुतलक यानी परमात्मा को ही हक मानती है, उसमें तकय्युल दिलाती है, उसमें तहलील दिलाती है। लेकिन मौजूदा दौर में मुरव्वजा तकरीबन 164 स्मृतियां कादिर मुतलक यानी परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, ना कादिर मुतलक के हुसूल के तरीकों पर रोशनी डालती हैं। वो सिर्फ जन्नत के तहफ्फुज यानी रिजर्वेशन तक ही महदूद रहकर नीस्त यानी न अस्ति, जो है नहीं उसी की हिमायत करती है, नजात का उनमें तस्करा तक नहीं है। अजीम इंसान यानी महापुरुष, अजीम इंसान खारिजी और दाखिली, अमली और रूहानी, रस्म दुनिया और हकीकी वेद से मुतालिक रिवाज दोनों का इल्म रखता है। यही वजह है कि तमाम समाज को अजीम इंसानों ने रहन सहन का तरीका बताया और एक इज्जत बख्श इंतजाम दिया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, खुद जोग के मालिक श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रामदास, दयानंद, गुरु गोविंद सिंह वगैरह हजारों अजीम इंसानों ने ऐसा किया। लेकिन ये इंतजामात वक्ती होते हैं। मुसीबत जदा मुआशरे को माद्याती चीजें अता करना सच्चाई नहीं है। दुनियावी उलझने लम्हाती हैं, दायमी नहीं, लिहाजा उनका हल भी हज़्ब हाल होता है, उसे दायमी इंतजाम की शक्ल में कबूल नहीं किया जा सकता। मुंतजिम यानी व्यवस्थाकार, मुआशरती तगैयुरात को अजीम इंसान सुलझाया करते हैं। अगर उन्हें ना सुलझाया जाए तो इल्म और बैराग से मुजयन आला रियाजत की बात कौन सुनेगा। इंसान जिस माहौल में फंसा है उसे वहां से हटाकर हकीकत को जानने की हालत में लाने के लिए तरह तरह की हिर्स हवस दी जाती है। उसके लिए अजीम इंसान जिस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, कोई इंतजाम देते हैं, वो दीन नहीं है। उससे 100-200 साल का इंतजाम मिलता है, 400-600 साल के लिए नजीर बन जाता है और 1000-2000 साल में वो मुआशराती ईजाद नए हालात के साथ साथ बेजान हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के मुआशरती इंतजाम में असलहा लाजमी था। क्या अब उस शमशेर की असलहा की जगह पर कोई माकूलियत है? ईसा मसीह गधे पर बैठते थे, गधे के मुतालिक उनके दिए गए इंतजामात का आज क्या इस्तेमाल है? उन्होंने कहा, किसी का गधा मत चुराओ। आज गधा कौन पालता है? इसी तरह जोग के मालिक श्री कृष्ण ने उस वक्त के मुआशरे को हज़्ब हाल मुनज़्ज़म किया, जिसका बयान महाभारत भागवत वगैरह किताबों में है। साथ ही उन किताबों में उन्होंने हकीकत की भी जहां तिहां अक्कासी की। आला रिफाही रियाजत और दुनियावी इंतजामात के अहकाम को एक में मिला देने से मुआशरा उनसुर के फैसला कुन सिलसिले को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता। दुनियावी इंतजामात को जैसे को तैसा नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कबूल करता है, क्योंकि वो दुनियावी है। अजीम इंसान ने कहा, ऐसा कहकर उन इंतजामात के लिए अजीम इंसानों की दुहाई भी देते हैं। वो अजीम इंसान के हकीकी अमल को तोड़ मरोड़ कर उसे गुमराह कुन बना देते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सबके मुतालिक पहले से चले आ रहे हैं। इसरार के धुंधले ख्यालात बाकी हैं। जाहिरी सतह पर जिंदगी बसर करने वाला समाज उनके कौल का मोटा मफहूम कबूल कर पाता है। लिहाजा भगवान श्री कृष्ण ने दायमी मकाम, लामहदूद जिंदगी, हमेशा सुकून अता करने वाली गीता शरीयत को मादी इंतजामात से अलहदा किया। महाभारत भारतीयों की अजीम तहजीबी शरीयत और फख्र आमेज तवारीख है। उन्होंने इस अजीम तवारीख के बीच में उसकी नशर इशात का, जिससे मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नस्लें इस दीनी शरीयत को दीनी सतह पर हकीकी तौर पर समझ सकें। गीता तमाम इंसानों के लिए। इम्तिदाद जमाना में वली पतंजलि वगैरह मुतफक्किर अजीम इंसानों ने भी आला शरफ की हकीकी तरीके को सामाजिक इंतजामात से हटाकर अलग तरह से पेश किया। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते ठीक आलाते जंग की तंजीम के वक्त किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मादी दुनिया में कभी अमन सुकून होता ही नहीं। अरबों इंसानों की कुर्बानी के बाद भी जो फतेह हासिल करेंगे वो भी नाकामयाब ही होंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसी दायमी जंग का तारुफ गीता के तवस्सुत से दिया, जिसमें एक बार फतेह मिल जाने पर हमेशा कायम रहने वाली कामरानी, लामहदूद जिंदगी और लाफानी मकाम है, जो तमाम इंसानों के लिए सहलल हुसूल है। यह मैदान और आलिम मैदान की जंग है, कुदरत और इंसान की जंग है। अंदरूनी तौर पर नामुबारक का खात्मा और मुबारक खुदाई नूर को हासिल करने का जरिया है। अफजल अहल के मुतालिक ही उन्होंने उसका बयान किया। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि तुझ बेहद मोहब्बत रखने वाले बंदे के लिए रिफाह की ख्वाहिश से कहता हूं, ये बेहद बसे गए राज है। आखिर में उन्होंने कहा कि जो अकीदतमंद नहीं है तो इंतजार करो, उसको इस रास्ते पर लाओ, फिर उसी के लिए बयान करो। ये तमाम इंसानों के लिए हकीकी बेहतरी का वाहिद तरीका है, जिसका सिलसिलेवार बयान श्री कृष्ण के जरिए कही गई गीता है। पेश करदा तफसीर यानी प्रस्तुत टीका। जोग के मालिक श्री कृष्ण के मकसद को हूबहू बयान करने की वजह से पेश करदा तफसीर का नाम यथार्थ गीता है, हकीकी गीता है। ये वदीयत रब्बानी पर मुनहसिर है। गीता खुद में मुकम्मल वसीले की पाक किताब है। पूरी गीता में शको शुबह का एक भी मकाम नहीं है। जहां कहीं शको शुबह महसूस होता है उसे अकली तौर पर जाना नहीं जा सकता है, इस वजह से महसूस होता है। लिहाजा कहीं समझ में ना आए तो किसी रमज शनास अजीम इंसान की कुर्बत में समझने की कोशिश करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानम् ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। तू मुर्शिद की खुर्बत में बैठकर हकीकत को जानने की कोशिश कर, उनसे इनकसारी के साथ अपना तजस्सुस जाहिर कर और उनकी खिदमत कर। आला मकाम पर फाइज अजीम इंसान तुम्हें इल्म अता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हकीकत का बदी ही दीदार हासिल किया है। ओम शांति शांति ही शांति ही तमत बिल खैर। गुजारिश यानी निवेदन। यथार्थ गीता यानी हकीकी गीता जोग के मालिक श्री कृष्ण का मुमताज कलाम श्रीमद् भगवत गीता का ही तर्जुमा है। इसमें आपके दिल में मौजूद रूह मुतलक को हासिल करने के तरीके को हासिल करने के बाद की गई अक्कासी है। नाफरमानी की नजर से इसका इस्तेमाल मना है, वरना हम अपने मकसद की मालूमात से महरूम रह जाएंगे। इसका पूरी अकीदत के साथ मुताला करने से इंसान भलाई के वसीलों से लबरेज हो जाता है, और मुख्तसर तौर पर भी कबूल करेगा तो मुमताज शरफ को हासिल कर लेगा, क्योंकि इस राह खुदा में आगाज का कभी खात्मा नहीं होता। स्वामी अड़गड़ानंद।